ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Reading from Srimad Bhagavatam, Skand Char, Adhyay 17, Sloka number
अमूषा छुत्परितानां आर्तानां परिदेवितं शमयिष्यामि मद्वाणे भिन्नायास्तव मेधसा अमूषां छुत्परितानां आर्तानां परिदेवितं शमयिष्यामि मद्वाणे भिन्नायास्तव मेधसा अमूषां छुत्परितानां आर्तानां परिदेवितं शमयिष्यामि मद्वाणे भिन्नायास्तव मेधसा का आर्ता नाम दुखियों का परिदेवितं क्रंदन विलाप समयिष्यामि शमन करूंगा मत बाण है मेरे बाणों से भिन्नाया खंड खंड करके तब तुम्हारे मेद सा मांस से। अब मैं अपने बाणों से तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा और तुम्हारे मांस से शुभार्थ नागरिकों को जो अन्न के अभाव में त्राहि त्राहि कर रहे हैं संतुष्ट करूंगा। इस प्रकार मैं अपने राज्य की प्रजा का विलखना दूर करूंगा। तात्पर्य, यहां पर हमें थोड़ा संकेत मिलता है कि सरकार किस प्रकार गोमांस खाने की व्यवस्था करे। यहां पर इंगित है कि बिरली परिस्थिति में जब अन्न न हो सरकार गोमांस खाने की अनुमति दे, किंतु जब पर्याप्त खाद्यान्न हो तो सरकार को चाहिए कि केवल जीव के स्वाद के लिए गोमांस खाने की अनुमति न दे। दूसरे शब्दों में, विरल परिस्थितियों में जब अन्न अभाव हो तभी मांसाहार की अनुमति दी जाए, अन्यथा नहीं। सरकार को जीव की तुष्टि के लिए बुचड़ खानों को बनाए रखना और वृथा ही पशुओं के वध की स्वीकृति देना उचित नहीं। जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है, गायों तथा अन्य पशुओं को खाने के लिए पर्याप्त घास दी जानी चाहिए। यदि पर्याप्त घास देने पर भी घास गाय दूध नहीं देती और भोजन का नितांत अभाव रहे तो सूखी दूध न देने वाली गायों को भूखी जनता का पेट भरने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। आवश्यकता के सिद्धांत के अनुसार पहले तो मानव समाज को अन्न तथा शाक उपजाने का यत्न करना चाहिए, किंतु यदि वे इसमें असफल रहे तो फिर मांसाहार करना चाहिए, अन्यथा नहीं। आजकल मानव समाज की जैसी संरचना है उसमें सारे संसार में पर्याप्त अन्न उत्पादन होता है, अतः बुचड़ खानों के खोले जाने का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। कुछ राष्ट्रों के पास उतना अतिरिक्त अन्न रहता है कि उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है और कभी कभी सरकार अधिक अन्न उपजाने पर रोक लगा देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी समुचित जनसंख्या के उदर पोषण के लिए पर्याप्त अन्न उत्पन्न करती है, किंतु अन्न का वितरण व्यापार के नियमों से तथा लाभ कमाने की इच्छा के सीमित रहता है। फलतः कहीं अन्न का अभाव रहता है तो कहीं अधिकता। यदि सारी पृथ्वी में अन्न वितरण की व्यवस्था के लिए एक ही सरकार हो तो अभाव का प्रश्न ही न उठे, बूचड़ खाने खोलने की आवश्यकता ही न पड़े और अधिक जनसंख्या के झूठे सिद्धांत प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही न रहे। श्री प्रभुपाद की।
ज्ञानात्मिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। इस अध्याय में किंग पृथु की धरती माता की प्रति क्रोधित होते हैं और इस पूरे अध्याय में देखते हैं कि किंग पृथु की पहले गुणगान गाया जाता था, उसके बाद उनको ब्राह्मणों के द्वारा पृथु महाराज को राजा की रूप में राजा की पोस्ट में दिया जाता है और पृथु उतने गुणवान भी थे। पृथु महाराज स्वयं भगवान की शक्त्यावेश अवतार थे। तो इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद जी यहां पर एम्फसिस करते हैं कि धरती माता को अन्न देने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि धरती माता सभी जीव जंतु को और मनुष्य और सभी प्रकार की जीवात्माओं को पालन पोषण करते हैं उनकी अन्न की द्वारा। काले व्यक्ति को अपने धर्म को अपनाना चाहिए। यहां पर उसके अलावा एक राजा की जो कर्तव्य है, एक जिम्मेदारी, उसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि राजा होता है उनको बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है। जैसे कि माँ बाप होते हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी संतान को पालन पोषण करना और उनको अच्छी रास्ता में ले जाना और उनको अच्छे बड़े एक गुणवान व्यक्ति की रूप में लाना और शिक्षा देना और सभी कुछ, ये सभी कुछ कर्तव्य एक माँ बाप को होता है। तो इसी प्रकार राजा होता है उनको कर्तव्य है कि और इन जिम्मेदारी है ये पृथ्वी में जितने भी मनुष्य जन है और प्राणी है और पशु पक्षी सभी कुछ को जिम्मेदारी राजा होता है, क्योंकि राजा है भगवान की प्रतिनिधि है। जैसे भगवान की जिम्मेदारी है, जैसे ये पृथ्वी को अर्पण किया है तो भगवान उत्पत्ति के साथ साथ सभी को अन्न देते हैं और सभी प्रकार से उनको सुख जीवन जीने के लिए सभी कुछ देते हैं, जैसे सोना चांदी और फल फूल अन्न, ये सभी कुछ भगवान की सृष्टि में है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ जैसे जीवात्मा इस भौतिक जगत में आते हैं उसके साथ साथ उनकी जो जरूरत ही है वो सभी कुछ है। तो इसीलिए मनुष्य को बहुत तकलीफ के साथ काम करके खाने के लिए बहुत कुछ श्रमण कर कष्ट लेने का कोई जरूरत नहीं है। वो सभी कुछ उनकी लाइफ के लिए जो जरूरती चीजें हैं वो सभी कुछ है, खाली उनकी जो धर्म है उसको अपनाना है। और राजा तो इस प्रकार से देखा है कि पृथ्वी उनकी अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है गाय के रूप में धारण करते हुए, और इसलिए राजा पृथु उनको दंड देने के लिए प्रयत्न करते हैं। और राजा की जिम्मेदारी है कि खाली ऐसा नहीं कि वो सभी लोग की खाना मिलता है ना, कपड़ा मिलता है और रोटी मिलता है और रहने की जगह मिलता है, इसको देखना खाली नहीं है। और उसके अलावा और सभी लोग सुरक्षित है कि नहीं, और सभी प्रकार की भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख ये दोनों को सभी को मिलता है कि नहीं, वो उनकी जिम्मेदारी है। खाली भौतिक से संतुष्टि होने से लोग संतुष्टि नहीं होंगे, इसको पूरी तरह से राजा पूरी तरह से जानता है। और आध्यात्मिक सुख का भी उनकी व्यवस्था करना चाहिए, ये भी राजाओं की जिम्मेदारी। और साथ साथ उनकी यहां तक भी जिम्मेदारी बनता है कि हर जीव हर व्यक्ति हर प्राणी पक्षी सब लोग धर्म को अपनाते हुए भगवान की धाम जाएंगे, उसी रास्ता को उनको खोलना चाहिए। और इसका मतलब है कि एक गुरु की राजा भी एक गुरु की स्थल में है, जैसे गुरु भगवान की प्रतिनिधि है और वैसे राजा भी भगवान की प्रतिनिधि है। और सभी को भगवान के धाम जाने तक उनकी मदद और उनकी सहयोग और करना ये राजा का भी एक कर्तव्य है। इसका मतलब हम जान सकते हैं कि राजा की जो कर्तव्य होता है और जिम्मेदारी होती है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि राजा यहां तक भी जिम्मेदारी की कारण है कि जैसे कि अगर ऋतु ऋतु में भी फर्क है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, तो उसका भी वो जिम्मेदारी होता है। और अन्न उर्पण नहीं होता है और बारिश ज्यादा होता है और किसी को अनटाइम डेथ, जैसे समय पर मृत्यु ना होकर बहुत जल्दी मौत होता है, उसका भी राजा जिम्मेदारी बनता है। और इसी प्रकार राजा जो है वो पूरे पृथ्वी को देखभाल करता है कि हर जीव सुख है कि नहीं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। इसलिए यहां पर एक जैसे कि उदाहरण दिया जाता है कि एक बार ब्राह्मण भगवान की समय पर, जब एक ब्राह्मण की पत्नी उन जब जन्म दिए और उनकी मौत हुई तुरंत द्वारका में, तो उस ब्राह्मण उसको देखकर वो उन जो मौत हुआ उसकी उनकी बेटा को, तो इसीलिए वो राजा के पास गए और राजा को निंदा करने लगा कि हे राजा, तुम्हारे राज्य में कि मेरा बेटा इस प्रकार से जन्म होते ही मर गया, तो इसके कारण है आप है, क्योंकि अगर राजा सही तरह से राज्य करेगा तो इस तरह से क्यों होगा। राजा सही तरह से कार्य ना करने के कारण आप अपने कर्तव्य को पूरी तरह से नहीं करते हो, इसीलिए लोगों के प्रति इस प्रकार से समस्या होता है। और ऐसा नहीं कि एक बार उनकी बेटा मरा तो दूसरी बार भी उनकी ब्राह्मण की जो बेटा था दूसरी बार भी मरे, और तीसरी चौथी पांच और इस तरह से नौ बार मरे थे। तो हर बार वो राजा के पास जाकर ये ब्राह्मण बताते हैं कि इसके कारण तुम ही हो, तुम धर्म को निर्वाह नहीं हो और तुम खाली पशुओं की हत्या में और खाली राज्य के जो ऐश्वर्य है उसको भोगने में लगे रहे हो। आपकी जो विचार चिंतन है लोगों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं है, उसके कारण लोगों की प्रति उसकी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से राजा को ब्राह्मण और निंदा की, तो इस स्टोरी का अर्थ है कि जब राजा अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से करता है तो ये इस दुनिया में कोई प्रजा को कष्ट नहीं होगी, क्योंकि राजा की उतना पावर है, राजा की उतना ऐश्वर्य है और सभी कुछ करने का शक्ति और जिम्मेदारी सब कुछ दिया हुआ है। तो इस पृथ्वी में भी और इसी समय में भी हम देख सकते हैं कि अगर इस दुनिया में, इस भारत में कोई राजा सही राजा बने और नेता सही नेता बने, तो उसी से लोगों को बहुत कुछ भला हो सकता है। और एक दिन में वो जो मांसाहार खाना उसको बंद कर सकते हैं और अवैध संबंध को बंद कर सकते हैं और स्मोकिंग बीड़ी सिगरेट पीना उसको बंद कर सकते हैं और इस प्रकार से चोरी काम और सभी कुछ को बहुत बहुत समय ना होकर बहुत कम समय में राजा को कर सकते हैं कि नहीं। उनकी इतना क्षमता है कि एक बार खाली उनकी नियम बनाना है और लोगों को अपनाने के लिए एक आदेश देना होगा, तो उसी से तुरंत सभी प्रकार के इस दुनिया में जितने भी डिपार्टमेंट है उन सभी को उनकी राजा की जो करते हैं उसको पालन करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। हम देखते हैं कि जैसे कोई नेता आजकल बने तो नया नया कुछ नियम निकालता रहता है कि आधार कार्ड बनाओ और वोटर कार्ड बनाओ और हर व्यक्ति इवन मंदिर में भी सब कोने कोने में सब वोटर कार्ड बना दे और आधार कार्ड बना दे है और हर महीने में कुछ नया नया नियम निकालता रहता है। तो ये उनका ही द्वारा होता है। तो इस तरह से अगर काम कर पाएंगे तो अच्छी काम भी वो कर सकते हैं। तो राजा सभी लोगों को इस दुनिया में वो ये कुछ समय के अंदर आध्यात्मिक सुख भी दे सकते हैं और भौतिक सुख भी दे सकते हैं। तुरंत ही एक नियम को अमल में लाकर, जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि जो नेता होता है, हर नेताओं को 3 बार मंदिर में आके कीर्तन करना चाहिए, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को। और हर जज होते हैं वो उसको तिलक लगाकर और भगवत गीता के अनुसार उनको जजमेंट देनी चाहिए। और इस प्रकार से जब राजा होगा तो पृथ्वी में कोई कमी नहीं रहेगी और हर व्यक्ति सुखी रह सकते हैं और कोई प्रकार का वायलेंस, क्राइम और रॉबरी और स्त्रियों की बलात्कार, ये सभी कोचों से बहुत जल्दी बचा सकते हैं। तो इस श्लोकों से संक्षिप्त में हम सीख सकते हैं कि एक अच्छी नेता होने का, अच्छी नेता को जरूरत है। अगर एक अच्छा नेता हो तो इसी से लाखों और करोड़ों की संख्या में लोगों को भला है। और ऐसा ही अगर एक नेता बुरा है तो लाखों और करोड़ों संख्या लोगों को भी बुरा है। तो दोनों प्रकार के सही, अच्छा भी है और बुरा भी है। तो इसलिए एक बार इस प्रकार के बुरा राजाओं को देखकर परशुराम अपने भगवान श्री कृष्ण परशुराम के रूप में आकर 21 बार सभी राजाओं को मार डाले और सभी उनको उसी समय इसको उसी समय पर इस प्रकार के राजा थे उनको देखकर डर के मार के ये पृथ्वी से सब जगह भागने लगे। तो महाभारत से भी हम देख सकते हैं कि उसी समय की राजा, जब अभी भी जो कुछ राजाओं इजिप्ट नगर में है और अन्य शहरों बहुत दूर दूर में है, वो सभी राजा है वो भारत से ही भागे हुए, भारत से भागे हुए लोग उसी समय का। तो ये भगवान भी इसीलिए कभी कभी हम देखते धर्म संस्थापनार्था या संभवामी युगे युगे, को धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी हर युग में अवतरित होते हैं। और जब जब इस प्रकार से नाश, धर्म की स्थापना नहीं है और लोग धर्म को नहीं अपनाते हैं और सभी धर्म नीच की ओर जाता है, उस समय भगवान स्वयं भी धर्म को स्थापन करने के लिए आते हैं और लोगों को उद्धार करते हैं। तो इसी समय पर भी कलयुग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और सभी लोगों को संकीर्तन आंदोलन के द्वारा उद्धार करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान अपने स्वयं अपने नाम के द्वारा इस पृथ्वी की हर जीवों को उद्धार करते हैं। खाली मनुष्य के भी नहीं और पशु पक्षी सभी प्रकार की योनियां जो है भगवान के नाम जप करके हुए भगवान की धाम जा सकते हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पर और भी कहते हैं कि पृथ्वी माता को अन्न देने में कोई दिक्कत नहीं है। काली एक हमको एक नियम बनाना होगा कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसा हो कि अन्न देने की हो और लोग जो है इसी से संतुष्ट रहे, भगवान की जो दिया हुआ धरती है और उसी से खेती करके गायों को पालन पोषण करके और बहुत आराम से सुखी जीवन जी सकते हैं और बहुत कष्ट करने का कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गया है तो उसके कारण अन्न कम मिलता है, ये सब बनावटी है कहानी और इससे और कोई मतलब नहीं है। अन्न नहीं देता है कि ऐसा कोई हम देख नहीं सकते, क्योंकि भारत इतनी बड़ी है कि 100 करोड़ों की लोगों की ऊपर संख्या है और कन्याकुमारी से लेके काश्मीर तक बहुत जमीन खाली पड़ी है। आप ट्रेन में अगर जाएंगे तो पता चलता है कि हजारों हजारों किलोमीटर तक जमीन खाली है जहां पर खेती नहीं होता है और बहुत सारे ऐसी जमीन खाली खाली पड़ा रहता है। तो वहां पर थोड़ा बहुत भी खेती करेंगे हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ तो बहुत कुछ अन्न उत्पन्ति होगा। तो हम एक बार कुछ समय की कुछ साल पहले गुजरात में था तो वहां पर हम कलेक्शन में जाते थे अन्न कलेक्शन। तो गाड़ी लेके जाते थे कि हर घर में कुछ उसी समय का बहुत बड़ी बड़ी बर्तन होती थी एक कुछ क्ले से बनाया हुआ एक ये रूम से भी बड़ा इतनी बड़ा बड़ा होती थी और उसमें हमेशा अन्न भरा रहता था। कि एक भक्त मेरे साथ जो जाते थे वो कहते थे कि एक साल का अन्न अभी से तैयार हो जाता है तो एक साल दो साल तक अन्न जो है वैसे पड़ा रहते घर में और उसको पक्षी को भी देते फ्री में, पक्षी भी आके खाता है और आसपास में जो जीव जोनी है उसको भी मिलता है। तो और घर तो बहुत सादा सादा सुदा घर है और झोपड़ी में रहते हैं और वो भी दान देते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है और झोपड़ी में रहते हैं और अन्न बहुत है और थोड़ी बहुत जमीन है और एक दो गाय है तो उसे लोग बहुत सुखी जीवन जीते हैं और सिक्योरिटी रहता है। तो आपको बैंक बैलेंस और बहुत कुछ कष्ट और कष्ट करके बाहर की दुनिया की साथ डीलिंग करने का कोई जरूरत नहीं पड़ते और अन्न है उसको पकाओ और कपड़ा भी सिलते हैं कपड़ा भी बनाते हैं वहां पर। तो बहुत और सिंपल हार्टेड व्यक्ति है, कोई डिप्लोमेसी नहीं है और हृदय का कुछ ऐसा नहीं कि बहुत जटिल व्यवहार करने का कोई जरूरत नहीं है। बहुत कष्ट करके आपको कन्वर्सेशन करना है और बार्गेनिंग करना है इसको जरूरत ही नहीं, खाली अन्न है और रहने की जगह है और कपड़ा है और वो लोग भी राम का भगवान राम की नाम लेते हैं तो बहुत सुखी जीवन है। और ऐसे हजारों हजारों घर है और गांव ऐसा कुछ है, सभी के पास खेती है और अनाज है तो इसी से लोगों की कोई तकलीफ ही नहीं और हर व्यक्ति काम मेहनत करते हैं और स्त्री और पुरुष उससे शरीर भी तंदुरुस्त रहते हैं। और अभी भी वो गुजरात में कुछ कुछ जिला का में कुछ औरत है और 90 साल है तो कोई तकलीफ नहीं शरीर में और अच्छे तंदुरुस्त है और बात करते हैं और व्यवहार अच्छे है और बुद्धि से अच्छे हैं और इसके ये सभी कुछ एक नेचर के साथ काम करने से और डीलिंग करने से व्यक्ति को एक प्रेम रहता है कुदरती के साथ रहने से व्यक्ति मनुष्य जो है एक मनुष्य के रूप में ही रहता है। और ज्यादा से ज्यादा ये गैजेट्स और मोबाइल कंप्यूटर के साथ जितना डीलिंग होता रहता है और एक इम्पर्सनल क्या बोलते हैं और एक मनुष्य की प्रति कुछ प्रेम भावना जो है वो बनाए नहीं रहता, इसलिए बहुत द्वेष और कंपटीशन क्रोध मैं आगे बढ़ूंगा मुझसे आप आगे बढ़ोगे तो मैं और आगे बढ़ूंगा इस प्रकार से कंपटीशन द्वेष के साथ व्यक्ति जितना अधिक से अधिक आधुनिक चीजों को उपयोग करके आधुनिक जीवन में ही रहना चाहते हैं और उसे व्यक्ति जो है बहुत कम जीता है और बहुत कम बुद्धि व्यक्ति होता है। और औरत जो है वो अपनी जो सदाचार कल्चर को भूल जाते हैं तो उसी से धर्म जो है वो खत्म हो जाती है, धर्म वहां पे समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। उसी समय भी लोग सोने पहनते थे और मुझे अभी भी याद है कि मेरी जो दादी माँ थी और बहुत सोने पहनती थी, घर बहुत धनवान नहीं थी लेकिन सोने पहनते थे और कान में पहनते थे और पाँव में पहनते थे और अंगूठे में पहनते थे। और क्योंकि ये अभी देखते हैं बहुत धनवान है लेकिन कुछ भी नहीं है और ना तो कान में है ना तो पाँव में है और ना तो अंगूठा में है और सब कुछ बैंक में है और क्रेडिट उसी से उसको रखे हुए और जीवन जीते हैं। और उसी समय बहुत पढ़े लिखे नहीं थे और ऐसी आधुनिक ज्ञान नहीं था, लेकिन लोग बहुत सुखी थे। और बैलगाड़ी होता था, और अभी भी मुझे याद है कि दादी माँ और ग्रैंडफादर ये सब बैलगाड़ी में जाते थे और मार्केट, और हर कुछ समय में बहुत कुछ फेस्टिवल्स होते थे, और हर व्यक्ति एक परिवार दूसरे परिवार के साथ संबंध बनाए रहता था, और हर व्यक्ति एक सदाचार और एक बहुत धर्म के साथ रहते थे और बहुत सुखी रहते थे और बहुत लंबे समय जीते थे। तो ये सब कुछ बहुत आसान है इस तरह से जीना, लेकिन लोगों की एक भ्रम है कि आधुनिक जो विदेश की जो मामला में ज्यादा आनंद लेते हैं और विदेश की चीजों में आनंद लेते हैं, तो उसी से एक भारत की जो संस्कृति थी वो सब कुछ भूल गए। तो उसी से उस संस्कृति में कोई आनंद ना होने के कारण सभी लोग अभी भटकते हैं। बहुत कुछ पढ़ा लिखा है और नौकरी नहीं मिलता है। बहुत सालों बिताया, 25 साल 3 साल पढ़ाई में बिताया और फिर भी मूर्खी रहा और उनको कोई नौकरी नहीं मिली। और इनसिक्योर फीलिंग्स, मतलब मुझे कौन सुरक्षा करेगा, मेरा शादी हो जाएगा तो क्या होगा, और मेरे बच्चों को कौन पालन पोषण करेगा, और नौकरी मिलेगा तो भी उसका कोई ठिकाना नहीं है, और इस तरह से एक डर रहता है, और जो उसे कमाए है उससे कभी संतुष्ट नहीं होता, और दूसरे को चीटिंग करते करते उनको जीना पड़ता है, और हमेशा डर के साथ और दुख के साथ जीना होता है। क्या होगा, कब क्या होगा मालूम नहीं, और संबंध घर के संबंध भी बहुत कमजोर है उनकी जो परिवार के साथ। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि भागवत धर्म को अपनाते उनका कोई डर नहीं, और जो होगा वो भगवान की मर्जी है। इसलिए शुरू से ही व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान और धर्म की स्थापन, इस प्रकार की व्यक्तियों को एजुकेशन होने से पहले तो उनका डर निकल जाता कि मरना तो एक दिन है, वह एक बार है, तो कभी भी हम मर सकते हैं। उनको पहले डर निकल जाती है कि मुझे कौन पालन पोषण करेगा, मेरा क्या होगा, ये सब कुछ जो अज्ञान है वो पहले शास्त्र के द्वारा सब अज्ञान को खाटा जाता। तो उसी से व्यक्ति एक उनको बल मिलती, आध्यात्मिक शास्त्र से उनको बल मिलता है, बाद में उनको कोई डर नहीं है, कुछ भी हो और खाना मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, इसे कोई उनको चिंता नहीं। और अन्य चीजों की प्रति भी वो बहुत आसक्ति नहीं रख सकते, और पति की प्रति, पत्नी की प्रति, बच्चों की प्रति, क्योंकि वो जानता है कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं, सब कुछ भगवान के हाथ में है और सब कुछ को भगवान ही मालिक है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ही मालिक भी है और सभी यज्ञ सभी तपस्या सभी के कारण और सब कुछ उनको ही अर्पण करना चाहिए। हम सुहृद ज्ञान सुहृद और सभी की वेलविशर, भगवान ही सबकी वेलविशर है, हर लिविंग एंटिटीज की ही इज द वेलविशर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। और ज्ञात्वा शांति मृच्छति, जब पूरी तरह से भगवान की चिंतन में और उनकी सेवा में और उनकी जो कुछ भी हम करेंगे उनकी प्रशंसा के लिए करते हुए व्यक्ति अगर जीता है तो उसी से ही सुख मिलता है। दैट इज प्लेजर वेर यू कैन डिराइव फ्रॉम, वहां से सुख की खोज होना चाहिए, वहां से असली सुख मिलता है तपस्या। जब व्यक्ति हर कार्य को भगवान को अर्पित करता है कि भगवान की नाम जप करते हैं और भगवान की दर्शन करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, और हर कार्य के पीछे हेतु है कि भगवान खुश हो, और हर कार्य जब भी करता है उनकी इंटेंशन जो उनकी चेतना है तो उसी से वो उस वो अर्पण करता है, हे भगवान कृष्ण तुम मुझसे सुखी, मुझसे खुश रहो, और ये जो कुछ भी मैं करता हूं वो आपकी आपकी प्रशंसा के लिए करता हूं और आपकी सुख के लिए मैं करता हूं। तो यही यही कृष्ण प्रेम, जब अपनी चेतना और यही शुद्ध भक्ति है। जब हम अपनी इंद्रियों से भगवान की प्रशंसा, भगवान की सुख देते हैं, तो यही भगवान की प्रति प्रेम। और कृष्ण प्रेम बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब दिल से व्यक्ति कुछ भी छोटा काम करता है वो भगवान के लिए अर्पित करता है और भगवान को प्रार्थना करता है कि इससे आप मुझसे खुश रहिए, तो गोपीजन भी इसी तरह से करते थे कि हर कार्य के पीछे चिंतन में वो भगवान को ही चिंतन करते थे और भगवान की सुखी के लिए काम करते थे और भगवान को खुश करने के लिए काम करते थे। तो यही प्रेम है और इसी से जीवात्मा आनंद भोगता है। तो हर कष्ट को, हर कार्य को भगवान को अर्पित करते हैं और उसी से उनको आनंद मिलता है। तो ये कोई एक बहुत सिंपल सी चीज है। ये इस चीजों को जब व्यक्ति अपनाता है तो इस दुनिया में कोई कष्ट उनको लिए कष्ट नहीं है और कोई भी चीजों से वो डरेगा नहीं और कोई भी चीजों से उनकी जो भक्ति है वो भंग नहीं हो सकता। खाली एक सिंपल फिलॉसफी है, भगवान को खुश करना है और उनके लिए कार्य करना चाहिए, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन ऐसा भी कुछ, और इसी से दुनिया सुख रहे और ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। ये कर्तव्य है और प्रजाओं को भी है और राजाओं को भी है। और राजा भी देखना चाहिए हर व्यक्ति भगवान की सेवा करता है कि नहीं और हर व्यक्ति की इच्छा भगवान की धाम जाने का है कि नहीं, और इस प्रकार से ट्रेनिंग। राजा हर प्रतिदिन उनको यही काम है कि कैसे मैं भगवान की धाम सभी मेरी प्रजाओं को भेजूंगा। तो यही वेल विशर राजा इस तरह से वेल विशर बनता है और इस तरह से उनकी जिम्मेदारी है और इस तरह से वो भी भगवान की प्रतिनिधि है। ये यहां पे मैं समाप्त करूंगा, अगर कुछ प्रश्न है तो कोशिश करूंगा जवाब देने की। तो ये स्थिति तो अभी भी नहीं है इस पृथ्वी में, हम देखते हैं, लेकिन कुछ जगह पर अभी भी देखते हैं कि सोना नहीं है पृथ्वी में और लोहा ज्यादा है, और ये भी एक पाप कर्म की उसकी क्या बोलते हैं रिएक्शन निशानी। और अन्न को बेचा जाता है और दूध को बेचा जाता है और पानी को भी बेचा जाता है और हवा हवा को भी बेचा जाता है और सभी को अन्न के लिए नौकरी करना पड़ता है और शिक्षाओं को भी बेचा जाता है और स्त्री पुरुष की जो विवाह होता है उसमें बहुत टूटती है और डाइवोर्सेस बहुत है और बहुत लोग शादी में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और क्योंकि एक शादी ऐसी चीज हो गया कि बर्डन हो गया मतलब उसी से लोग भागते हैं और वैसे ही लोग लंबे जीते भी नहीं है। 100 साल जीना था और 60-40 के बाद तो व्यक्ति की बहुत तकलीफ शरीर में तकलीफ होता है और हम देखते हैं कि हर व्यक्ति असुख है, सुख नहीं और बहुत जल्दी मरते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि इस स्थिति नहीं है, लेकिन और हर व्यक्ति अधर्म है। कोई व्यक्ति धर्म को अपनाने के लिए तैयार नहीं, हमें प्रचार करना पड़ता है। हर व्यक्ति की घर घर गए जाके पुस्तक देना पड़ता है, भगवद गीता पढ़ो और मंदिर आओ और जैसे कि कुछ माँ बाप को बेटा जानता नहीं है, ऐसा हो गया स्थिति कि जैसे भगवान को उनका अंश नहीं जानते हैं कि इसीलिए उनको जागरूक करना पड़ने का स्थिति है। उसी समय ऐसे नहीं था कि भगवान को नहीं जानते हैं और लेकिन अभी तो उनको 66 सेशन ऑफ फिलोसफी हर 6 दिन बुलाओ, प्रसाद खिलाओ और परिश्रम उठाओ, कीर्तन भजन करो और उनको नियमित रूप से माला जपाओ और उनको डिवोटी बनाओ और फिर भी वो ठीक थे नहीं, वो इसी स्थिति अभी भी है और उनको बहुत कष्ट करके उनको प्रचार करना पड़ता है। और उसी समय ऐसा नहीं था कि प्रचार करने के जाओ, हर व्यक्ति जानते थे कि लक्ष्य क्या है और हर व्यक्ति की जैसे कि कुछ समय के पहले भी वृद्ध लोग होते थे कि वो जानते थे, बहुत कुछ ज्ञानवान होते थे और फिलोसफी जानते थे और धर्म की बारे में भी जानते थे। अभी तो ये धर्म की पुस्तक को वितरण करो और उसको डिस्ट्रीब्यूशन करो और यहाँ तक लोग उनको भगवद गीता क्या है ये भी मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ तक मुझे भी मालूम नहीं था कि स्कूलों में पढ़ते समय कि हम खाली भगवद गीता के नाम सुने कि भगवद गीता है वो हिंदू का एक होली बुक है और मुस्लिम की होली बुक है कुरान और क्रिश्चियन की होली बुक है बाइबल और इतनी संक्षिप्त में सिखाया जाती थी और कुछ नहीं जानते थे और सभी लोग मांस खाते थे और मछली खाते थे और इसी स्थिति जैसे बहुत ग्रास में नहीं है लेकिन हर व्यक्ति में बहुत फैला हुआ है। और उसी समय इस स्थिति की एक राजा बताते हैं कि तो इसी राजा की जिम्मेदारी क्या है, राजा की जिम्मेदारी क्या है, ये पृथु महाराज बताते हैं कि अपने उदाहरण के द्वारा कि राजा इतना जिम्मेदारी लेता है कि प्रजाओं के लिए, प्रजाओं को अपने घर वाले समझते हैं और अपना बेटा अपना समझकर वो राजाओं को काम करना चाहिए कि ये उनकी शिक्षा है। तो इस तरह से उनको ये भी शिक्षा है कि और सभीों को भगवान की दाम ले जाना, ये भी एक उनकी शिक्षा है। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की जय, शिव प्रभुपाद की जय।